جی
کانگریس گورنمنٹ نے ساری دنیا میں مہنگائی کر دی, کانگریس گورنمنٹ ہے نا, ساری بھارت چلا رہا ہے اس سے بھید کیا تو سے کیا کہ ساری کاسٹلی چیزیں کر دی, سارا دنیا چلا رہی ہے تو بھی پوچھنے والا نہیں.
ابھی کمائی زیادہ ہو رہی ہے کہ تھوڑی ہو رہی ہے؟ کمائی تو زیادہ ہو رہی ہے, تو سرکار جب دیکھتی ہے کہ کمائی زیادہ ہو رہی ہے اور ہر گھر کا ہر ایک سدسیہ کمائی میں لگا ہوا ہے تو محنت زیادہ محسوس ہوگی یا کم محسوس ہوگی؟ ہے کم محسوس ہوگی محنت, ہے زیادہ محنت محسوس ہوتی ہے. اور جب محنت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ آپس میں محبت نہیں رہی. یتھا راجا تتھا پرجا, پہلے راجائیں ہوتے تھے پرجا سے اتنی محبت ہوتی تھی اور پرجا کو راجا میں اتنی محبت ہوتی تھی کہ جان گواہی کرنے کے لیے سدا تیار رہتے تھے. تو ابھی گورنمنٹ بھی ایسی تمو پردھان ہے, پہلے راجائیں ہوتے تھے پرجا سے کر وصول کرتے تھے, ایسے کر وصول کرتے تھے جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے شہد کھینچتی ہے, پتہ ہی نہیں لگتا تھا. اور آج کھینچ کھینچ کے لیتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے سہج سہج, ایک ہوتا ہے مانگنے سے مل جائے, اور ایک ہوتا ہے کھینچ کھینچ کے لینا. تو زیادہ دکھ کس میں ہوگا؟ کھینچ کھینچ کے لینے میں دکھ ہوگا. گورنمنٹ راستے ڈھونڈتی ہے کہ کیسے ان سے کھینچا جائے, اور جب کھینچنے کے راستے بناتی ہے تو یتھا راجا تتھا پرجا بھی ایسے ایسے راستے نکالنے میں لگی رہتی ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ ہی مہنگائی بڑھا رہی ہے, گورنمنٹ بھی بڑھا رہی ہے اور پرجا ورگ بھی مہنگائی بڑھا رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کا خون چوسنے والے ہیں. کوئی کو کسی سے محبت نہیں ہے. نہیں تو پرجا کا ارتھ ہوتا ہے پرکشت روپیڑ جائےتے, جا مانے جنم لینا, جن کا پرکشت روپ سے جنم ہونا ارتھات ایڑی سے لے کر چوٹی تک کی جو طاقت لگائی جاتی ہے اس طاقت سے جس بچے کا جنم ہوتا ہے اسے پرجا کہا جاتا ہے. آج کی پرجا بھی تامسی ہے اور راجا بھی تامسی ہے, اس لیے مہنگائی تو بڑھتی چلی جائے گی. کب تک بڑھے گی؟ ہے انت کب ہوگا؟ ہے بیکاروں کا انت کب ہوگا؟ महंगाई तब तक बढ़ती जाएगी जब तक जो असली रचयिता बाप है, असली जन्मदाता है, वो संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता है। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो स्थापना हो चुकी होगी या नहीं? हो चुकी होगी। एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नजारे। जो न समझने वाले होंगे वो हाय हाय करते रहेंगे, और जो समझते जावेंगे वो वाह वाह करते जावेंगे। उनको पैसे बचाने की चिंता नहीं रहेगी, फिर सोचेंगे जो भी हमारे पास है लटू लेजवा क्या करें, हैं अविनाशी कमाई में लगा दें।
बाबा मुरली में आया है पीयू के वाणी माने क्या हो?
पीयू माने बाप है, पंजाबी में सिंधी भाषा में कहते हैं पीयू बाप को। तो यज्ञ के आदि में जो बाबा वाणी चलाते थे वो उस समय वाणी लिखी जाती थी। ब्रह्मा बाबा लिखते थे और बाप वाणी चलाते थे कोई बच्चे या बच्ची द्वारा। तो जो वाणी लिखी जाती थी उसकी फिर बाद में कापियां निकलती थी, वो पीयू की वाणी कही जाती थी।
और बाबा मुरली में आया है कन्याएं माताएं स्वर्ग गेट खोलेगी, माना कर्म से क्या करना पड़ेगा कर्तव्य?
ज्ञान सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों में कोई फर्क होता है या नहीं होता है? क्या फर्क होता है? सुनाने वाला ज्ञानी माना जाता है और सुनने वाला अज्ञानी होता है, नहीं तो सुने ही क्यों? तो क्या कन्याएं माता ही सुना सकती हैं? भाई लोग नहीं सुना सकते? हैं? कन्या माताओं में क्या खास बात?
मुझे अच्छी लगती है।
क्यों अच्छी लगती है कन्याओं माताओं के मुख से? प्योरिटी रहती है। क्यों? कन्याओं माताओं में सुपनखा पूतना नहीं होती है? हैं?
कोई कोई लेकिन पुरुष तो सारे दुर्गंध।
हाँ, जो पुरुष तन है वो चोला ही ऐसा है कि कितना भी कंट्रोल करने वाला हो तो भी प्रैक्टिकल जीवन में जब उतरते हैं तो ज्ञान धरा रहता है, धरा रह जाता है, अज्ञानता की एक्ट हो ही जाती है। और कन्याओं माताओं में लाज रहती है, लज्जा के कारण ही उन्हें कन्याएं माताएं कहा जाता है। जिस लज्जा के कारण वो इम्प्योरिटी का निवारण कर लेती है, पवित्रता नस नस में समा जाती है, ज्ञान में भी प्योरिटी समाई हुई है, दृष्टि में भी प्योरिटी समाई हुई है, और कहीं कर्मेंद्रियों में भी वो प्योरिटी समा जाए तो वो ज्ञान सुनाने वाली कन्याएं माताएं शिव शक्तियां कही जाती हैं। किसकी शक्तियां? शिव की शक्तियां। शिव तो अकर्ता है कि करता है? वो तो अकर्ता है, वो करे तो वो पाए भी, वो तो स्वर्ग स्थापन करता नहीं, तो किसी के द्वारा कराता होगा ना, तो सुनाता तो सबको है, कन्याओं माताओं को भी सुनाता है, भाइयों को भी सुनाता है और समझाता भी सबको है, कन्याओं माताओं को भी समझाता है और भाइयों को भी समझाता है। कन्याओं माताओं की बुद्धि घरग्रस्त में ही रहती है, बाहर की दुनिया तो देखी है ही नहीं, तो बुद्धि उतनी विशाल नहीं होती है, तो ज्ञान की गहराइयों को उतना ज्यादा नहीं समझ सकती है। और भाई लोग बहुत तीखे चले जाते हैं ज्ञान, तो सुनने सुनाने और समझने समझाने में तीखे चले जाते हैं, या प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करने में भी तीखे चले जाते हैं, उसमें पीछे रह जाते हैं। इसलिए नाम रख दिया निर्गुण बालकों की संस्था, क्या भक्ति मार्ग में उन्होंने नाम रख दिया निर्गुण बालकों की संस्था। क्या उन निर्गुण बालकों में बालक ही बालक होते हैं, बालिकाएं नहीं होती? होती तो हैं, लेकिन जितनी भी बालिकाएं भी होती हैं वो सब रुद्रमाला के मण के स्वभाव संस्कार से पुरुष संस्कार वाले होते हैं। इसलिए दुनिया में जो अवगुण कहीं न देखने को मिलता हो वो अवगुण उनमें देखने को मिल जाएगा। इसलिए कहा किसकी सेना ली? बंदर बंदरियों की सेना ली। तो बताया कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं, रुद्रमाला के मणके पुरुष स्वभाव संस्कार वाले जब तक हैं तब तक स्वर्ग के गेट खोलने काबिल नहीं है, वो वाइब्रेशन बना ही नहीं सकेंगे। और जो खुद नहीं बना सकता है और दूसरों को बैठ पढ़ाई पढ़ाए तो हंसी का पात्र बनेगा, हंसी का पात्र बन जाता है। कथा भी सुनाई पंडित जी की और बुढ़िया की, पंडित जी कहते रहे ये विषय वैतरणी नदी पार करने के लिए ऐसे ऐसे करो, भगवान का नाम लोगे, याद करोगे, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करोगे तो विषय वैतरणी नदी पार हो जाएगी। पंडित जी खुद पार करने से डरते रहे और बुढ़िया पार हो गई, तो कहां की बात हुई? इसी समय की बातें हैं कि कन्याएं माताओं में जब ये स्मृति जागृत हो जाएगी कि ज्ञान सुनाने का वास्तव में हक किसको है, कन्याओं माताओं गौमुख को है, भक्ति मार्ग में गौमुख से अमृत निकला ऐसा दिखाते हैं। शिव के मंदिर तो बने हुए हैं ढेर के ढेर, लेकिन जो भी मंदिर बने हुए हैं उसमें गौ दिखाई है कि बैल? क्या दिखाया है? बैल दिखाया है। वो बैल नाली की तरफ मुंह किए हुए है, वो पीने का इच्छुक है या पिलाने वाला है? यहां तो गायन है गौमुख का, गौमुख से गंगा निकली, ज्ञान अमृत निकला। तो नंबर वार वो कन्याएं माताएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार में प्योरिटी भरी हुई है, वो ही स्वर्गीय वाइब्रेशन बनावेंगी, वातावरण बनावेंगी और स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त बनती है। और
बाबा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और ग्रह पर भी उपग्रह दिखाते हैं,
उसका भेद का,
जैसे बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे आदमी के चक्कर काटने लग पड़ता है या अपने अम्मा बाप के चारों ओर चक्कर काटता है?
अपने अम्मा बाप,
उसे पकड़ के ले भी जाओ तो भी अम्मा बाप के चारों तरफ चक्कर काटेगा। तो ऐसे ही है, जो उपग्रह जिस ग्रह का उपग्रह है उसी के आकर्षण में आकर्षित रहता है। ये चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी की पैदाइश है तो पृथ्वी के चक्कर काटता है, पृथ्वी के आकर्षण से आकर्षित रहता है। और हेलीकॉप्टर से जावेंगे नई दुनिया में, हम चल करके स्कूल में नहीं जावेंगे। कैसे जावेंगे? हेलीकॉप्टर से। ऐसे नहीं कि वहाँ जहाज नहीं होंगे, यहाँ पुरानी दुनिया में जहाज हैं और नई दुनिया में जहाज ही ना हो तो नई दुनिया अच्छी या पुरानी दुनिया अच्छी? फिर तो नई दुनिया बेकार हो गई। लेकिन नहीं, नई दुनिया में भी जहाज होते हैं और पुरानी दुनिया में भी जहाज होते हैं, फिर अंतर को कुछ होगा कि नहीं होगा? अंतर यह है कि नई दुनिया में जो भी हेलीकॉप्टर या जहाज होंगे वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, एक्सीडेंट प्रूफ होंगे। और यहाँ पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए और सारे के सारे मर जाए। और यहाँ तो सबको मुहैया नहीं है, और वहाँ हर फैमिली को अपने अपने जहाज होंगे क्या, और वो भी इशारे से चलने वाले होंगे। ऐसे नहीं कि वो वहाँ की तकनीक पढ़ाई पढ़ो बैठ करके 10-20 बरस तब वो वहाँ की तकनीक सीखने में आवे, नहीं, यूं इशारा किया तो इधर घूम गया, यूं इशारा किया तो इधर घूम गया, यूं इशारा किया तो ऊपर गया, यूं किया तो नीचे आया। बोलो प्रश्न करो, और क्या प्रश्न करोगे? है संशय आ रहा है? हैं? नहीं, झूठा ही कह दिया नहीं आ रहा है, हैं? वहां की साइंस यहाँ की साइंस के मुकाबले ज्यादा तीखी होगी या कम तीखी होगी? ज्यादा तीखी साइंस होगी। आज के जो वैज्ञानिक हैं कितना नाम कमाते हैं, वो वैज्ञानिक नई दुनिया में जावेंगे या नहीं जावेंगे? वो वैज्ञानिक भी नई दुनिया में जावेंगे, परंतु बेचारे अभी ज्ञान नहीं ले रहे हैं इसलिए पीछे रह जावेंगे। लास्ट में आवेंगे और पढ़ाई इतनी फास्ट पढ़ाएंगे कि नई दुनिया की तकनीक एकदम फर्स्ट क्लास होगी। यह है पांच तत्वों को नियंत्रण करने वाली साइंस, और वहां साइंस कैसी होगी? पांच तत्व जड़ हैं या चैतन्य हैं? जड़ हैं। जड़ पांच तत्वों को चैतन्य आत्मा नियंत्रित करती है या जड़ तुम्हें ही आत्मा नियंत्रित करती है? आत्मा पांच जड़ तत्वों को भी चैतन्य कर वो नियंत्रित कर लेती है। तो पांच तत्व पावरफुल हुए या आत्मा पावरफुल हुई? आत्मा पावरफुल हुई। और आत्मा को राजयोग सिखाया जा सकता है? पांच तत्व राजयोग नहीं सीखते। लेकिन बाबा का कहना है कि जब तक तुम बच्चों ने पांच तत्वों को सतो प्रधान नहीं बनाया है, दुनिया के पांचों तत्वों को, तब तक नई दुनिया नहीं कही जाएगी। कौन सी दुनिया कही जाएगी? पुरानी दुनिया ही कही जाएगी। जब तुम योग बल से पांच तत्वों को भी सतो प्रधान बना लेंगे, तब दुनिया नई कही जाएगी। तो आज के वैज्ञानिक तो पांच तत्वों को ही कंट्रोल कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, फिर क्या होगा? पांच तत्व पूरे ही कंट्रोल में आ जाएंगे और आत्मा जो है वो इतनी कंट्रोल्ड हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी कि इच्छा की और काम हुआ, सारा काम इशारे से होगा। योगी कंट्रोल करेंगे आत्मा को और आत्माएं कंट्रोल करेंगी पांच तत्वों को। अब पांच तत्व जो प्रकृति है वो सारी दुनिया को सतही कंट्रोल कर लेगी। वहां हमें खाने पीने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सारा परिवार कमाई कमाने में लग जाए, पढ़ाई पढ़ने में लग जाए, एक एक बच्चों को एक एक बोरा किताबें रोज धोनी पड़ती हैं, सब कुछ सहज हो जाएगा। सारी कार्रवाई प्रकृति के द्वारा होगी। हमें क्या करना है फिर? मौज मस्ती मारना। आज के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो काम करना ज्यादा पसंद करते हैं या क्लबों में मस्ती मारना ज्यादा पसंद करते हैं? तो बस ऐसी दुनिया हमको मिलेगी, संगीत डांस चित्रकारी नाटकबाजी मस्ती मारते रहो। वो कैसे? अभी तो बाबा बता रहे हैं ना, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। प्रजा जो की वर्ग की जो आत्माएं होती हैं वो मंद बुद्धि होती हैं या तीक्ष्ण बुद्धि होती हैं? है? तो मंद बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धियों के ऊपर राज्य करे, वो राज्य अच्छा चलेगा या खराब चलेगा? तो अभी खराब राज्य चल रहा है देश देशांतर में, हर जगह लूट मार मारा काटी मची हुई है, खून खराबा में लगा हुआ है। यही राज्य जब राजयोगियों के हाथ पे आवेगा तो दुनिया में खुशहाली हो जाएगी। राजयोगी ज्यादा होते हैं या प्रजायोगी ज्यादा होते हैं? प्रजायोगी होते हैं बेवकूफ, और राजयोगी होते हैं होशियार। राजयोग सिखाता है भगवान और प्रजातंत्र बनाते हैं शैतान। अभी भी देखो हिंदुस्तान में कहीं तेलंगाना बनाना है, कहीं हमको सिखस्तान बनाना है, अलग अलग खंड खंड किए चले जा रहे हैं। इसलिए किए जा रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं इस खंड में हमारा प्रभुत्व ज्यादा है, इस तेलंगाना में हमको वोट ज्यादा मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा राज्य होगा यहाँ। ये क्षुद्र प्रवृत्ति हुई या विशाल बुद्धि हुई? कितनी लड़ाई झगड़ा मारा मारी बढ़ती ही चली जा रही। एक है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब बन जाए, और एक हमारा पालनहार हो, होते तो नंबर वारी है। तो प्रजातंत्र कब बनता है? जब दुनिया में प्रजा की संख्या बहुत बढ़ जाती है। आज से 200-300 साल पहले दुनिया में जितने भी देश थे उनमें प्रजातंत्र राज्य था या राजा का राज्य था? पहले राजाओं के राज्य होते थे, फिर ये प्रजा की संख्या दुनिया में जब ज्यादा बढ़ गई हर देश में तो ये प्रजातंत्र राज्य चला। और जोर से बोलो ना,
शरीर करते जाएंगे
हाँ,
और आत्मा पावरफुल बनते जाएंगे
हाँ,
तो प्रजापिता बाप के शरीर सड़े,
प्रजापिता बाप का शरीर
सड़ेगा।
आत्मा शरीर को कंट्रोल करती है या शरीर आत्मा को कंट्रोल करता है? आत्मा शरीर को कंट्रोल करती है। शरीर कैसा भी हो अगर आत्मा पावरफुल है तो उस शरीर से अपना काम निकाल लेगी। कोई आदमी बड़ा लुंजुम पुंजुम होता है, देखा होगा, और उसमें कोई सोल प्रवेश कर जाती है, 10 आदमी उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी कंट्रोल, तो आत्मा ज्यादा पावरफुल ही हुई या शरीर ज्यादा पावरफुल हुआ? आत्मा पावरफुल होती है। इसलिए आत्मिक शक्ति को उजागर करना, विल पावर को बढ़ाना, ये बाप सिखाते हैं। और
बाबा मराठी में कहावत है, पति जो है ना सखिये के नीचे बैठा सांप है, तो बेहद में अर्थ क्या होता
है?
पति
हाँ, पति
सखिये के नीचे बैठा सांप है, वो कभी भी डर सकता है,
इसका
बेहद का अर्थ क्या होता है?
क्यों
हम तो किसी नहीं मानना इसे रहते हैं?
क्या सारे ही पति दुनिया में जितने होते हैं वो सब सांप होते हैं? नहीं, कहावत है, भले कहावत है, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में जितने भी पति हुए हैं वो सारे ही सांप होते हैं या नहीं? है? रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, है? ये भाई कह रहा है, शायद कुमार तो नहीं है, हाँ माताएं कोई है? सारे ही पति सांप होते हैं या कोई ऐसा भी हो सकता है जो सांप न हो? प्रजापति, ओ सबसे बड़ा सांप।
है? वो नहीं हो सकता ना?
नहीं, अगर प्रजापति कहें तो प्रजापति का गायन है शास्त्रों में, प्रजापिता का गायन नहीं है। तो जिसका गायन नहीं है वो ज्यादा अच्छा या जिसका गायन है वो ज्यादा अच्छा? प्रजापति का गायन है, प्रजापिता का गायन नहीं है। लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि का बीज बोने वाला पिता कोई होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। फिर उसका गायन क्यों नहीं है?
कंपोजर स्टेज।
अरे हमारे यज्ञ से कनेक्टेड बात है। यज्ञ के आदि में प्रजा पिता था या पति था? पिता था, फेल हो गया, इसलिए कोई गायन नहीं है। वही प्रजापिता वाली आत्मा जिसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण किया जाता है यज्ञ के आदि में, वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के सारी मनुष्य सृष्टि जो है वो सजनी बनती है, और शिव बाप उसमें प्रवेश करके साजन का पार्ट बजाता है। उस पति का ये गायन है क्या कि वो सांप नहीं है, वो उस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अभी प्रश्न ये था, जो गायन है कि पति तकिए के नीचे छुपा हुआ सांप है, तो सारी दुनिया के सारे ही पति सांप हैं या कोई ऐसा भी है जो सांप नहीं है? अब वो प्रजापति पति कैसे बनता है सारी प्रजा का पति? वो तब बनता है जब शिव बाप उसमें प्रवेश करे। और
बाबा मराठी की कविता की लाइन है, स्वामी तीन जगत का आई बिना भिकार, मतलब तीनों जगत का स्वामी होते हुए भी माँ के बिना भिकार।
हाँ पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य वो ही पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण बनता है। तो ये जो पांच रूप दिखाए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें सबसे ऊंचा पार्टधारी कौन? ब्राह्मण। वो ब्राह्मण रचना है या रचयिता है? ब्राह्मण जब ब्राह्मण बना तो ब्राह्मण कैसे बनता है? ब्रह्मा मुखवंशावली हो तो ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण है पहला, पहला रचना है उसका रचयिता माँ है, जिस मुख से वो सुनता है। अगर न सुने तो मुखवंशावली ब्राह्मण भी नहीं बन सकता। लेकिन उस समय ये पता नहीं होता, काम तो सारा चलता है लेकिन पता किसी को नहीं होता है कि मैं पहला ब्राह्मण हूं दुनिया का, मैं जगत की माता हूं। इसके लिए परिचय देने वाला बाप चाहिए, टीचर चाहिए या नहीं चाहिए? तो 76 का टाइम है बाप की प्रत्यक्षता का टाइम, जबकि बाप टीचर बन करके आता है और बच्चों को समझाता है कि पहला ब्राह्मण कौन, उस पहले ब्राह्मण को जन्म देने वाला जन्मदाता कौन, तो माँ जन्मदाता हो गई, रचयिता हो गई। रचयिता बड़ा या रचना बड़ी? रचयिता बड़ा हो गया। आपका प्रश्न हल हुआ?
उसके बिना बिहारी गाया हुआ है ना?
हैं?
तीनों जगत का स्वामी होते हुए भी माँ के बिना वो भिखारी है।
नहीं, माँ, माँ को नहीं मालूम है तो भिखारी हुआ ना? मालूम है? सन 36 से लेकर सन 76 तक पता है? पता ही नहीं तो भिखारी है, बेगर है। बेगर टू प्रिंस बनना है कि बन गया? बनना है।
बाबा, अभी 8 दिन पहले तो आकाशवाणी चली है ना, भावना पूरी, तो उसने कॉल लाया है विदेशी लोगों के साथ बातचीत कर रहे बाप दादा
है,
विदेशी ग्रुप के साथ
है
बातचीत चल रही थी। उसने बाप दादा ने एक बात बोली है कि शिव बाबा को रात में गुड नाइट करके सो जाओ और सवेरे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करके उठ जाओ
है।
अभी ये बात तो बोलने में कैन नहीं होती बाबा।
क्यों? शिव बाबा को गुड नाइट तब किया जाता है जब अलग हुआ जाता है। गुड नाइट कब करते हैं? जब कोई से अलग होते हैं, जुदा होते हैं, गुड नाइट। बाप दादा गुलजार दादी में जुदा होते हैं इसलिए गुड नाइट करते हैं। और हम बच्चे स्वप्न और संकल्प में भी बाप से जुदा होने का पुरुषार्थ करते हैं क्या? है वहाँ जो पढ़ाने वाला है हम उसको गुरु मानते हैं या हमारा गुरु कोई दूसरा है? तेरा गुरु वही है? है? तो फिर प्रश्न खत्म। हाँ, क्रॉस नहीं करती। लग रहा है तुमको है थोड़ा ही, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाला जो है वो स्वयं जिसमें पढ़ा रहा है वो साबित करता है कि मैं भूत प्रेत आत्मा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मेरा दिव्य जन्म है, मैं और आत्माओं के सदस्य प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये तुम्हारी बुद्धि की बात है कि तुम सदैव उसको अपने साथ रखो, हम कभी उससे जुदा होते ही नहीं। और
अमृतवाणी बोला अफ्रीका ने सच्ची सेवा शुरू की
है,
अफ्रीका ने सच्ची सेवा शुरू की
है। नहीं आई तो क्या हुआ? असली सेवा वो होती है जिस सेवा में इशारा मिले कि बाप आया हुआ है। क्या? बाप आया हुआ है और वो सेवा उसी के द्वारा हो सकती है जिसकी बुद्धि में पक्का बैठा हो। क्या बैठा हो? किसको याद करना है? सबसे अच्छी युक्ति, सहज युक्ति है किसको याद करना? और नारायण को सबसे ज्यादा कौन याद कर सकता है? उससे तो प्रैक्टिकल में जो करेगा वही तो दूसरों को सिखाएगा। तो जिसने प्रैक्टिकल किया हुआ है खुद के लिए भी और जो भी संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं हैं उनके लिए ऑटोमेटिक वो सेवा शुरू हो रही है। सब बेसिक वाली आत्माएं असली ज्ञान नहीं उठाएंगी। लेकिन बेसिक वालों में 10% ऐसे हैं जो असली ज्ञान उठाएंगे, समझेंगे कि हमने माता से जन्म लिया, माता की पालना पहले हमने ली है। वो 10% वहां बैठे हैं या पहले यहां बैठे हैं?
वहां बैठे
हुए हैं। बाबा 8 जो नष्ट मोहा बनते हैं और 108 जो नष्ट मोहा बनते हैं, 100 लिखना चाहिए। हाँ बाबा, 8 जो नष्ट मोहा बनते हैं और 100 जो नष्ट मोहा बनते हैं, उनमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? अरे जल्दी बताओ।
अंतर 8 मिनट नहीं है बाबा।
हाँ, जो 100 हैं उनमें सब धर्म के संस्कार भरे हुए हैं और 8 में सूर्यवंश के संस्कार भरे हुए हैं। वो जब से ज्ञान में आए एडवांस में, तब से ही उनका ये लक्षण देखने में आएगा जिंदगी का, एक बाप दूसरा न कोई। सेवा करेंगे तो किसकी करना है? बाप की सेवा करनी है। संग करना है तो किसका संग करना है? एक बाप का संग करना है। वो लालायित रहेंगे हर समय। 8 को वो लगन नहीं होगी। वो 100 को वो लगन नहीं होगी। ब्रह्मा बाबा बीच में बहुत गंदे इंटरफेयर करता है। अगर कोई आत्मा का एक बार कोर्स हुआ है, क्या उनका फिर से मधुबन में कोर्स करना जरूरी है? अरे बताओ जल्दी से। बस सिर्फ रिवाइज। मधुबन में दोबारा जाकर के कोर्स करने के लिए जाते हैं या भट्टी करने जाते हैं? भट्टी करने जाते हैं। भट्टी एक प्रकार से 9 महीने का बेहद का गर्भ है। जैसे गर्भ में जाती है आत्मा, एक दुनिया को छोड़कर फिर दूसरी दुनिया में जन्म लेने के लिए गर्भ में जाना पड़ता है, माँ के पेट में जाना पड़ता है। जैसे अभी बताया ब्रह्मा का पेट है ब्रह्म महत्तत्व, जब तक पेट में नहीं जावेंगे तब तक नई दुनिया में नहीं आवेंगे। तो पुरानी दुनिया से मरते हैं तो नई दुनिया में जाने के लिए बीच में गर्भ जाना जरूरी है। ऐसे ही यहाँ जो एक बार भट्टी कर लेते हैं और बीच में कहीं भूल गए, जैसे बाबा कहते हैं कोई का 2 महीने चिट्ठी नहीं आती है तो क्या समझते हैं? बच्चा मर गया। 2 महीने क्लास ही नहीं सुनते हैं, बाबा की मुरली बाबा की चिट्ठी सुनते ही नहीं है तो बाबा कहेंगे मर गए। तो 2-4-6 महीने जिनका बिल्कुल कनेक्शन कट हो जाता है, वो ब्राह्मणों की दुनिया से बाहर निकल गए या ब्राह्मणों की दुनिया में हैं? बाहर निकल गए। आपकी पर्सनल बात बाद में, यहाँ जनरल बात हो रही है। आप पर्सनल अपनी कथा कहानी बाद में क्लियर करना। जनरल बात हो रही है जो ज्ञान से टूट जाते हैं परिवार से अलग हो जाते हैं लंबे समय के लिए, तो उनको दोबारा भट्टी करना जरूरी है। नहीं तो बाप के बच्चे कैसे कहे जावेंगे? बाप का बच्चा बनता है तो बाप की गोदी में जाना जरूरी, बाप के घर में जाके जन्म लेना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। गोरक्ष भाई क्या कहना चाहते हैं दोबारा कहो, बात क्लियर नहीं होती इससे।
दूसरा आत्मा बनकर पुरुषार्थ करने से रुद्र मालूम जाता है।
हाँ बोलो।
अगर बाबा ने अगर अभी मुरली में बोला है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन
है,
तो अगर पक्का आत्मा बनकर पुरुषार्थ करेंगे तो बाप को समझ सकते
हैं?
अगर पक्का आत्मा बनकर पुरुषार्थ करेंगे
है
तो इस बात को पलट सकते हैं।
इस बात को पलट सकते हैं दुर्योधन दुशासन बनने से पलट सकते हैं।
अगर पक्का आत्मा बनकर पुरुषार्थ करेंगे
विजय माला में भाई होंगे या नहीं होंगे? विजय माला में भी भाई होंगे, और जो भाई होंगे वो दूसरों को कंट्रोल्ड करने के स्वभाव संस्कार वाले होंगे, हावी होने के स्वभाव संस्कार वाले होंगे, या रानियों की तरह कंट्रोल्ड होने के स्वभाव संस्कार वाले, बकरी के स्वभाव संस्कार वाले होंगे? बकरी बनोगे? क्यों कहते हम बकरी नहीं बनेंगे, चाहे दुर्योधन तो शासन बने या न बने। विष्णु माला माने सारी ही किसकी माला? बाबा ने बोला है, उन्होंने तो तीन शेर दिखा दिए हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन वास्तव में तीन शेर नहीं है। मुरली ने बोला एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है। तो विष्णु के संस्कार क्या हुए? बकरी के संस्कार हुए। माना जो कान पकड़ ले बस उसी के कंट्रोल में आ जाएगी। रानी के स्वभाव संस्कार हैं, बनेंगे है? तो कहते नहीं बनेंगे। बाबा राम वाली आत्मा आदि में फेल हुई, एक बार अनिश्चय में आई और 76 के बाद अनिश्चय में नहीं आई, तो 84 का चक्कर कैसे लगाती है? बोलो। है पहली बार फेल हुई तो एक ही जन्म हुआ ना, और 84 का चक्कर कैसे लगाती है? 84 बार फेल होना चाहिए ना है? क्या संकल्प के आधार पर? पहले
ज्ञान नहीं था,
वो ज्ञान वो ज्ञान ब्रह्मा बाबा में भी नहीं था शुरुआत में, कोई में भी ज्ञान नहीं था, अकेले राम की बात थोड़ा ही है। क्या
श्रद्धा विश्वास
किसको? ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा विश्वास था, तो उनके जन्म मरण के चक्र ज्यादा हैं या कम हैं? सबसे ज्यादा जन्म कौन लेता है? है अगर ये कहें ब्रह्मा, तो अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन? तो वही सबसे ज्यादा जन्म लेता है। नहीं, इनका प्रश्न ये है कि वो आत्मा यज्ञ के आदमी एक बार फेल हुई, एक बार अनिश्चय आया, तो 84 के चक्र में नहीं आना चाहिए ना, एक ही जन्म लेना चाहिए ना। वो तो किसी को भी नहीं, तुम्हें था। वो उनके ग्रुप या उनके ग्रुप के बाद जितने भी ग्रुप ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले, किसी को भी नहीं मालूम था। ज्ञान तो किसी को नहीं था। इसका जवाब ये है, यज्ञ के आदि में तो एक जन्म हुआ चलो, लेकिन दोबारा जन्म लेकर जब आती है तो सबसे ज्यादा प्रश्न और उत्तर के चक्र में कौन सी आत्मा गुजरना शुरू करती है? राम वाली आत्मा। जब प्रश्न चित्त है तो मृत्यु होती है, और प्रसन्न चित्त है, प्रश्न का जवाब मिल गया तो जन्म हो जाता है। तो 68-69 से लेकर के और 76 पूरा होते होते 77 जन्म मरण के चक्र में सबसे जास्ती वो ही आती है। 77 में संपूर्णता वर्ष कहा जाता है, तो 7 वर्ष वो और 3 वर्ष वो,
10
अनेक जन्मों का चक्कर हो गया। और ओहो, लंबा चौड़ा चक्कर चलाते हैं। बाबा, मनुष्यों में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान भी मनुष्यों जैसा ही करता है। जब तक बच्चा लगन में रहता है, याद करता है, सेवा करता है, तब तक बच्चे को खूब याद करता है, मदद देता है। और बच्चा बीमार हो जाता है या कोई उसमें सोल प्रवेश कर जाती है या कोई हरकत कर देता है, तो बात भी नहीं करता। तो बाबा, समस्या ये है कि स्थिति खराब होने पर बच्चे को मदद करना चाहिए, बच्चे को सुधारना चाहिए या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? तो लौकिक बाप, लौकिक मनुष्यों और भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर है? है? क्या अंतर है बताओ? क्या जमीन आसमान का अंतर है? अरे अरे, दुनियावी बाप होते हैं, वो भी बच्चा दुकान संभालता है तो उसको मदद करते हैं, उसको ज्यादा वर्षा दे देते हैं, पहले दे देते हैं। बच्चा मदद नहीं करता है, पागल खाने में डाल देते हैं। रखना चाहिए अपने पास, ज्यादा प्यार देना चाहिए, शायद ज्यादा प्यार से सुधर जाए। तो भगवान में और मनुष्यों में क्या अंतर हुआ है? नहीं, अंतर यह है कि जैसे लौकिक बाप होते हैं, چھوٹا بچہ جب تک ہے تب تک وہ ٹٹی بھی کرتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، منہ نوچتا ہے، بال پکڑتا ہے، مونچھیں اکھاڑ دیتا ہے، اس کو معاف لگاتار کرتا ہے، انگلی پکڑ کر کے چلاتا ہے. ایسے ہی یہ بے حد کا باپ بھی ہے جو بچوں کو آدھی کال میں جب بچے مہاتما کی اسٹیج پر ہوتے ہیں تو ان کو انگلی پکڑ کر کے چلاتا ہے. سب نے انوبھو کیا ہوگا. پھر بچوں کو سمجھدار بھی تو ہونا چاہیے. اگر زندگی بھر بڑے ہو کے بھی پاگل جیسے کرم کرتے رہے، سدھرے ہی نہیں، تو اس میں باپ کیا کرے گا؟
ابھی ایک کمار اور ایک ماتا گونگی وہ مرلی سننے آتے ہیں،
ان کو اشارے سے نہیں سمجھایا جا سکتا، وہ اشارے سے زیادہ سمجھتے ہیں، ان کی یاد کی شکتی اور تیکھی ہوگی. جن کی کچھ اندریاں کام نہیں کرتی ہیں ان کا جو گیارہویں اندریا من ہے وہ تیکھا کام کرتا ہے. بس ایک ہی اور رہ گیا. بابا مایا کسی کو نہیں چھوڑتی، مایا سب کی پریکشا لیتی ہے. تو مایا کی پریکشا کیسے ہوگی؟
مایا پتی لے گا
ہے،
مایا پتی ہے.
مایا موسی کہی جاتی ہے. کیا کہی جاتی ہے؟ موسی. موسی ماں سمان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے ماں بچوں کو نہیں سنبھالتی ہے، موسی سنبھال لیتی ہے. مایا بلی کے ہم سب ایک ٹائم تھا پونگرے تھے. مایا بلی نے ہم سب کی بیسک میں پالنا کی ہے. کوئی کی نہ کی ہو تو بتائے، سب کی پالنا کی ہے. تو مایا رچیتا ہوئی یا رچنا ہوئی؟ رچنا ہو گئی. رچنا نہیں ہوئی، رچیتا ہوئی. تو جو رچیتا ہے اس کی پریکشا پہلے ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ اس کی تو پہلے ہی پریکشا ہو گئی. پہلے ہی پریکشا ہو جانے کے کارن وہ سرو شکتیوان کا ٹائٹل لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا؟ جو ماں ہے وہ سرو شکتیوان کا ٹائٹل لے کے نہیں بیٹھی ہے، اور موسی سرو شکتیوان کا ٹائٹل لے کے بیٹھی ہوئی ہے. پاس پاس کیا، وہ تو سب کو پاس ہونے میں اڑچن ڈال دیتی ہے. اس کو جو کام ملا ہوا ہے وہ کام کوئی بھی نہیں کر پاتا. اس کو کام ملا ہوا ہے کہ جو بچہ شریمت پر نہ چلے اس بچے کو خوب پھتکاؤ. اتنی طاقت کوئی میں ہے ہی نہیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ مایا کی پریکشا کیسے ہوتی ہے.
اور مرغی میں بھی جاتی ہے اور بھوگ بھی لے کے آتی ہے. اور لانا ہے کیا نہیں لانا ہے؟
کوئی بھکتی میں جاتا ہے، کوئی گیان سمجھو، کوئی بی کے میں چلنا شروع کیا، کوئی نے بی کے میں چلنا شروع کیا اور وہ بی کے میں بھی جاتا ہے اور مندر میں بھی جاتا ہے، ماتھا بھی ٹکاتا ہے، گھنٹ بھی بجاتا ہے. بی کے میں بھی جا رہا ہے اور مندر میں جا کر کے घंटे भी बजाता है, कीर्तन भी करता है, तालियां बजा बजा करके सत्संगियों के साथ। तो क्या समझें कि बेसिक ज्ञान बुद्धि में बैठा है या नहीं बैठा है? नहीं बैठा है। मना भी नहीं करना है कि वहां दुनियावी सत्संग में क्यों जाते हो, तो यहां भी मना नहीं करना है कोई को कि तुम बीके में क्यों जाते हो। ज्ञान सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनते 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 जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी, नहीं तो धक्का देके छुड़ाएंगे तो ये हो सकता है दोनों दिन से मारा जाए। इसका जवाब हो चुका, चलो हो गया टाइम।